প্রভু কোথায় গেল আচার্য ঠাকুর প্রেমাধন করুণা প্রচুর হেন প্রভু কোথায় গেল আচার্য ঠাকুর প্রভু কোথায় গেল আচার্য ঠাকুর জয় অনিল প্রেমাধন করুণা প্রচুর কহাঁ মোরা রূপ স্বরূপ কহাঁ সনাতন কহাঁ মোরা স্বরূপ রূপ কহাঁ সনাতন কহাঁ দাস রঘুনাথ পতিত পাবন কহাঁ দাস রঘুনাথ পতিত পাবন জয় অনিল প্রেমাধন করুণা প্রচুর হেন প্রভু কোথায় গেল আচার্য ঠাকুর জয় অনিল প্রেমাধন করুণা প্রচুর হেন প্রভু কোথায় গেল আচার্য ঠাকুর জয় অনিল প্রেমাধন করুণা প্রচুর কহাঁ মোরা পট যুগা কহাঁ কবিরাজা কহাঁ মোরা পট যুগা কহাঁ কবিরাজা একাকাল কোথায় গেল মোরা নটরাজ একাকাল কোথায় গেল মোরা নটরাজ হে অনিল প্রেমাধন করুণা পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পাশিব পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পাশিব তোরাঙ্গে গুণে রানিধি কোথা গেল গোরাঙ্গে গুণে রানিধি কোথা গেল জয় অনিল প্রেমাধন করুণা প্রচুর কালে কোথায় গেল সে तबा संगे ना संगे ना कैला वेला तबा संगे ना संगे ना कैला वेला संग ना पाया काने नरोता मुदा से संग न पाया कदे नरोतम Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna, गौरानिताय जय गौरानिता गौरानिताय जय गौरानिता जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद राधा गोविंद भगवान की जय। शिष्य सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। शिष्य पंच तत्व गौर निताय की जय। पद पावन श्रील प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज भागवत ग्रंथ के बारे में चर्चा नहीं है, आज भागवत भक्त के बारे में चर्चा है। तो आज दो महान भक्तों का तिरोभाव दिवस है। पहले हैं रघुनंदन ठाकुर और दूसरे हैं बंसीदास बाबा जी महाराज। ये दोनों ही हमारी परंपरा में, गौड़ीय वैष्णव परंपरा में महान भक्त हैं। तो भक्तों का जितना आविर्भाव महत्वपूर्ण है, उतना ही तिरोभाव भी महत्वपूर्ण है। अधिकतर लोग समझते हैं कि सिर्फ आविर्भाव इम्पॉर्टेंट है, तिरोभाव इम्पॉर्टेंट नहीं है। गौड़ीय वैष्णव समाज में तो तिरोभाव को महत्वपूर्णता दी जाती है, लेकिन अधिकतर लोकल एरियाज में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, डेथ डे सेलिब्रेट नहीं करते हैं। क्योंकि वहाँ पर भौतिक शरीर समाप्त होता है, इसलिए उसको डेथ डे बोलते हैं। लेकिन जो वैष्णव होते हैं उनका तिरोभाव डिसअपीयरेंस इज अपीयरेंस, उनका एक आविर्भाव होता है। तो किसी वैष्णव भक्त से पूछ रहे थे कि आप लोग किसी व्यक्ति के चले जाने वाले दिन को सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव के रूप में मनाते हैं, क्यों? तो उन्होंने बताया कि जब कोई व्यक्ति इस जगत से तिरोभाव करता है, चला जाता है, तो उसका कहीं ना कहीं आविर्भाव होता है। कोई व्यक्ति यहाँ पे शरीर छोड़कर जाएगा तो उसका किसी भौतिक दूसरे रूप में परिवर्तित होकर शरीर मिलेगा। लेकिन एक जो भक्त है, जो एक वैष्णव है, जब वो यहाँ से तिरोभाव करते हैं तो वो कहाँ आविर्भाव करते हैं? भगवत धाम में। और जब भगवत धाम में आविर्भाव करेंगे तो वो बर्थडे होता है कहाँ पे? गोलोक धाम में। तो हम उस जन्म दिवस को बनाते हैं, इसलिए तिरोभाव बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। या फिर ऐसे भी कुछ लोग वर्णन करते हैं कि आविर्भाव तिथि जब होती है तब पता ही नहीं होता, कि ये बाद में जाकर इतने महान वैष्णव बनने वाले हैं या हैं, लेकिन जब वो अपना शरीर त्याग करके भोले भगवत धाम प्रवेश करते हैं तब समझ में आता है ओहो ये तो इतने बड़े आचार्य थे, इतने बड़े भक्त थे। तो इसलिए उनका तिरोभाव यहाँ पर ज्यादा महत्वपूर्णता से गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में बनाया जाता है। आप देखिए वृंदावन में 200 से अधिक समाधियां हैं, जन्म स्थली से ज्यादा महत्वपूर्णता वैष्णव भक्त समाधि स्थली को देते हैं। उन समाधियों में आज भी अगर आप जाएंगे तो वहां पर भगवान के दर्शन, भगवान के भक्तों के दर्शन आपको होंगे। श्री प्रभुपाद जब राधा दामोदर मंदिर में रहते थे तो उनका विशेष प्रयोजन था वंशी गोपाल दास मंदिर से निकलकर राधा दामोदर मंदिर में आने का, कि वहां पर रूप गोस्वामी जी की भजन कुटीर और समाधि है। तो इस तरह से अनेकों भक्तों ने समाधि से निकलते हुए बात करी है वैष्णव भक्तों से। तो इसका मतलब जो वैष्णव है कहते हैं कभी मरते नहीं है, तो ये बात सत्य है। और अभी कुछ ही समय पहले की, मतलब हमारे इसी कलयुग की बात है, कलयुग में भी कुछ ही वर्ष पहले एक भक्त थे जिनका नाम था किशोरदास बाबा जी महाराज। उन्होंने जावित्री कुंज है वृंदावन में, द्वादश आदित्य टीला है जहां पर राधा मदन मोहन मंदिर के पास में, वहां पर उन्होंने एक जमीन खरीदी और कहा कि मैं वृंदावन में कुटिया बना के भजन करूंगा। तो भजन करते थे, तो जब वो चैंट कर रहे थे अपना, और जो भक्त होते हैं, अभी हम सारी चर्चा करेंगे किस प्रकार से एक भागवत भक्त अपना जीवन चरित्र लिखते हैं, होता है, जीते हैं उसको। तो किशोरदास बाबा जी महाराज रात को 2:30 बजे उठ करके जप कर रहे थे, और जप करते करते उन्होंने देखा कि मदन मोहन मंदिर की सीढ़ियों से एक साधु वेश में कोई कोपिन धारण कर कर कंधा अवरुद्ध कोई व्यक्ति नीचे उतर रहे हैं, और वो साथ में जप भी कर रहे हैं, और ये भी जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी जप कर रहे हैं, वो भी जप कर रहे हैं। लेकिन हम रोज भगवत दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, साथ में ऑल्टर पे हमारे विग्रहों के साथ में गोस्वामी के फोटोग्राफ्स भी होते हैं, आचार्यों के विग्रह भी होते हैं, फोटोग्राफ होते हैं, लेकिन हम कभी उनको ये नहीं सोच पाते कि ये साक्षात है। हम उनको फोटोग्राफ एक चित्र मानते हैं, तो वो लेकिन चित्र में हमको एहसास होता है कि ये प्रभुपाद जी जैसा विग्रह है, ये ऐसा है, हम मान नहीं पाते कि ये साक्षात है। लेकिन अगर मान जाए तो हमारी सिद्धि हो जाएगी, लेकिन हम मान नहीं पाते। उन्हीं के सामने हम बातें भी करते हैं, उन्हीं के सामने हम प्रजल्पा भी कर लेते हैं, उन्हीं के सामने घर में बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है ना ये चित्र है, भगवान नहीं है। तो किशोरदास बाबा जी महाराज ने देखा तो था, और उन्होंने जब उस व्यक्ति को देखा जप करते हुए रात को, और बड़ी दाढ़ी है उनकी और छोटी कोपिन पहना है, तो उन्होंने पूछा, क्या आप सनातन गोस्वामी महाराज तो नहीं है? ऐसे पूछा उन्होंने। अभी सनातन गोस्वामी तो 500 साल पहले आए थे, और ये तो अभी 100 साल के अंदर। तो कह रहे हैं, आप सनातन गोस्वामी पाद तो नहीं है? तो सनातन गोस्वामी महाराज ही थे जो मदन मोहन मंदिर से नीचे उतरे थे। उन्होंने उनकी तरफ देखा, और किशोरदास बाबा जी महाराज लिखते हैं कि उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा हरि बोल, और फिर वापस पुनः अपनी समाधि में एंटर कर। श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि रूप गोस्वामी निकल कर आते हैं और मुझे कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम अपने गुरुदेव की आज्ञा को पूर्ण करोगे, थोड़ा सा इंतजार करो, और सिर पर हाथ लगाते हैं। तो प्रभुपाद जी को रूप गोस्वामी से दर्शन हुए, किशोरदास बाबा जी महाराज को सनातन गोस्वामी को हुए, और भी अनेक भक्तों को भगवान और भगवान के भक्तों के दर्शन होते रहते हैं। ये उनका रियलाइजेशन है, निजी अनुभव, तो उसको हम ज्यादा चर्चा नहीं करते निजी अनुभवों को, लेकिन ऐसा जो दिवस है इस पर हम विशेष चर्चा कर सकते हैं। तो पहले हैं रघुनंदन ठाकुर, उनके बारे में सब जानते हैं। रघुनंदन ठाकुर जो हैं, वो उनके पिताजी हैं मुकुंद दास। मुकुंद दास तीन भाई थे, माधव दास, मुकुंद दास और श्री नरहरि ठाकुर। हम रोज आरती में गाते हैं ना, जब संध्या आरती करते हैं गौरा आरती, उसमें गाते हैं नर हरि, है ना, तो उसमें नरहरि का नाम आता है। तो नरहरि जो हैं वो वही हैं, और उनके दो भाई हैं माधव दास और मुकुंद दास, और ये सब श्रीखंड क्षेत्र में रहते थे, कटवा जिला जो है, आज कटवा जाते हैं भक्त दर्शन करने, कटवा के पास श्रीखंड में ये तीनों भाई रहते थे, और इनके एक पुत्र थे मुकुंद दास के, जिनका नाम था रघुनंदन ठाकुर। रघुनंदन जो थे वो बहुत ही जिसे कहते हैं अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे, और उनके घर में वंश परंपरा में गोपीनाथ विग्रह घर में रहा करते थे। वंश परंपरा में कई बार विग्रह होते हैं जो कि अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, तो दादा भी पूजा करते थे, पिता भी पूजा करते हैं। तो एक बार किसी काम के सिलसिले में जो मुकुंददास थे उनको अपने घर से कहीं दूर जाना था, तो उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन से कहा, देखो रघुनंदन मुझे किसी कार्य से आज काम के सिलसिले में जाना है, तो आप एक काम करना, अब आप 5 वर्ष के हो गए हो, भगवान को भोग अवश्य लगाना। तो उन्होंने कहा कि भोग कैसे लगता है पिताजी? कहा जैसे तुम्हारी माता तुम्हें खिलाती है, मैं तुम्हें खिलाता हूं और तुम प्लेट पूरी की पूरी चट कर जाते हो, ऐसे ही भगवान गोपीनाथ को भी भोग लगाया जाता है। अच्छा, वो भी खाते हैं? हाँ वो भी खाते हैं, और फिर उनसे जो हमें प्राप्त होता है उसे हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, तो जो हम अर्पित करते हैं उसे भोग कहते हैं, जो हमें मिलता है उसे प्रसाद कहते हैं। लेकिन भौतिक संसार के लोग कहते हैं भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ता है, भगवान को भोग चढ़ता है, भोग लगता है, क्योंकि भगवान कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, भगवान भोक्ता है इसलिए उनको भोग लगता है, और जो रिटर्न आता है वो प्रसाद कहलाता है। तो कई दूर अगर देखते हैं लोग बोलते हैं प्रसाद भगवान को भोग लगाने के लिए कहाँ मिलेगा, भगवान को भोग में प्रसाद नहीं लगता है, भोग लगता है। तो इस तरह से गोपीनाथ विग्रह के सामने रघुनंदन ने अपनी माता से बोला कि मुझे दीजिए भगवान को भोग लगाना है, तो उन्होंने जैसे रोज प्लेट लगाते थे उसमें प्रसाद लगाकर लड्डू मिठाई वगैरह सब रख करके दे दिया। दिया तो उन्होंने गोपीनाथ विग्रह के सामने जाकर के प्रार्थना करी कि हे गोपीनाथ, आज मैं अपने पिता को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उनका प्रतिनिधि बनकर आपके सामने भोग अर्पित कर रहा हूँ, कृपया इसे ग्रहण कर लीजिए। तो आप सभी ने कथा सुनी है कि वो गोपीनाथ विग्रह ने उसको स्वीकार नहीं किया, और काफी देर तक इंतजार करने के बाद में भी गोपीनाथ विग्रह स्वीकार नहीं कर रहे थे। अब हम भी भोग लगाते हैं और हम प्लेट रखते हैं, बाद में फिर हम हाथ जोड़ करके कहते हैं भगवान स्वीकार करो, प्रणाम मंत्र बोल के इंतजार कर रहे होते हैं कब मेरे 10 मिनट 15 मिनट पूरे हो और मैं भोग वापिस लेके प्रसाद खाऊं, क्योंकि हमारी विधि भोगने में होती है, भगवान को स्वीकार भगवान को ग्रहण कराने में नहीं होती है। तो अगर हमारे भगवान भोग ग्रहण करने लग जाए तो कितने लोग खिलाने को तैयार होंगे? लोग बोलेंगे कि भैया हमारा तो अन्न ही चला जाता है, सारा ठाकुर जी ग्रहण कर जाते हैं, हमारा घर तो भूखा ही रहता है, जितना लगा उतना खा जाते हैं, जगन्नाथ है तो जगत के नाथ हैं, अन्न क्षेत्र में तो अन्न ही अन्न खाते हैं, हजारों हजारों मटके का अन्न खा जाते हैं, ये तो कितना खाते हैं भगवान, सबके घरों में विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान है, फिर भी पेट नहीं भरता इनका। तो ऐसा भावना आती है लोगों के मन में, और फिर वो कहते हैं भगवान तो खाली है ना, भाव के भूखे हैं, खाना नहीं खाते हैं, प्रसाद नहीं ग्रहण, भोग नहीं ग्रहण करते हैं। तो बोले अच्छा, लेकिन इनके पिता ने बोला था जैसे तुम खाते हो वैसे ही भगवान खाते हैं। अब इनके मन में ये बात थी कि जैसे भगवान मैं खाता हूँ वैसे ये भी खाएंगे, तो अब भगवान के आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे पिता आएंगे मुझ पर नाराज होंगे, आप ग्रहण कर लीजिए कर लीजिए। और विश्वास जो है ना, ये सबसे बड़ी एक इकाई जिसे कहते हैं वो है हमारी भक्ति की सबसे बड़ी इकाई है, आदो श्रद्धा ततो साधु संघ। हम साधु संघ को महत्वता देते हैं, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, प्रभु जी एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, पर उससे पहले फेथ। और आप देखेंगे अगर जाकर के क्यों हमें निष्ठा प्राप्त नहीं होती है भक्ति में, क्योंकि उसके मूल स्रोत में हमें श्रद्धा नहीं है। भगवान श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, पंचतत्व गौर निकाय की जय, पते पावन श्री प्रभुपाद की, श्रद्धा नहीं है। अगर श्रद्धा हो तो निष्ठा के स्तर पर पहुंचने में देर नहीं लगती है। जैसे एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी तो वहां पर साधु को बुलाया गया और कहा कि आप भागवत भक्त हैं, कृपया कर कुछ ऐसा करें कि बारिश हो जाए। तो भगवत भक्त ने कहा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं अन्नाद भवति भूतानि, अन्न जो है वो व्यक्ति को चलाता है, और अन्न को प्राप्त करने के लिए बारिश आती है, और बारिश को प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना पड़ता है, और यज्ञ कौन सा? हरिनाम यज्ञ। तो जब हम यज्ञ करेंगे तो बारिश आएगी, आप लोग यज्ञ नहीं करते इसलिए बारिश नहीं होती है, आप यज्ञ करिए। तो सभी को बोला कि यज्ञ की सामग्री लेकर आइए और सब यहां बैठ के कीर्तन करेंगे, हरिनाम यज्ञ होगा। तो एक पिता जो कि अपने को भक्त बोलते थे, उनका पुत्र छाता लेकर घर से बाहर निकला, तो पिता ने पूछा बेटा छाता लेके क्यों जा रहे हो, हम तो यज्ञ में जा रहे हैं। बोला पिताजी महाराज ने कहा है कि यज्ञ के बाद में क्या होगी, बारिश होगी, तो बारिश होगी तो हम भीग जाएंगे, इसलिए मैं छाता लेके पहले से जा रहा हूं। ये उसका विश्वास है। क्या हमारा विश्वास है हरिनाम लेते वक्त कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा? आप देखिए बहुत सारी चीजें हम देखेंगे ना, हम ग्रंथ पे ग्रंथ पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, सेमिनार पे सेमिनार, जप का रिट्रीट कर रहे हैं, जप की ट्रीट नहीं खाई है, जप का रिट्रीट खाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रीट मतलब जप का आनंद जो है, वो कितने लोगों को अनुभव होता है कि हाँ जप में बहुत रस है, कहाँ आनंद का अनुभव होता है। एक माला का, एक मन का भी अगर ध्यान पूर्वक हो जाए तो बहुत आनंद का अनुभव होता है। कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन ज्यादातर बार ऐसा होता है 16 माला पूरी करने का नियम जो है ये कष्टकारी लगता है, और पूरी हो जाने पर एक लंबी सांस लेता है, 16 पूरी हो गई मेरी, है ना। कितनी बार ऐसा होता है 16 पूरी होने पर मन करे कि यार 16 क्यों पूरी हो गई, ऐसा होता है कभी? तो ये हमारे लिए एक बेंच मार्क है, जिस दिन ऐसा अनुभव हो आप सही रास्ते पे, वरना अभी बहुत प्रगति करनी है भक्ति में, है ना। तो इस तरह से, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ तो मेरा नहीं है, मेरा भी वैसा ही है, 16 पूरी हो जाने पे लगता है बस बहुत हो गया, है ना। लेकिन सच्चाई है कि हमारी भक्ति का अपरकाष्ठा वो है कि जब हमें माला पूर्ण होने पर खींचा जाए हाथ से, ना कि अभी 16 पूरी हो गई, तो मन करे आज समय क्यों नहीं रुक जाता, मुझे एक माला और करने का मन कर रहा है। तो ये फेथ है, विश्वास जितना होगा। तो इस तरह से रघुनंदन ठाकुर जो थे उनको पूर्ण विश्वास था, और वो भगवान के आगे प्रार्थना करने लगे कि हे गोपीनाथ, आज प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। और थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, प्लेट पूरी फिनिश, सारी प्लेट में से सारा भोग जो था गोपीनाथ जी ग्रहण कर गए। अब प्रसाद के रूप में तो कुछ दिया नहीं, अब जब प्रसाद के रूप में कुछ नहीं है तो चिंतित हो गए। उनके पिताजी आए और बोलते हैं कि प्रसाद लेके आओ बेटा, आज गोपीनाथ जी को भोग लगाया है, ले आओ प्रसाद और मुझे खिलाओ। तो बोले पिताजी आपने कहा था कि वो जैसे मैं खाता हूँ वैसे वो खाते हैं, तो मैंने जैसे खाया वैसे उन्होंने भी खा लिया। तो पिता सोचने लगे कि पहले तो हमारा पुत्र इतना ज्यादा रहस्यमयी सभी की बातें नहीं करता था, बड़ा मतलब नॉटी नहीं था, अभी तो ये रहस्यमयी बातें करता है, शरारती बातें कर रहा है, खुद खा गया है और कह रहा है गोपीनाथ जी ने खाया। कहा ठीक है कोई बात नहीं, कल के सुबह के भोग में देखेंगे। दोबारा उनको बोला भोग लगाओ अपनी पत्नी को, और कहा इनको पुनः दो। उन्होंने फिर से पुनः उसे प्राप्त किया उस भोग को, और ले जा करके भगवान के सामने रखा। और इस बार उन्होंने बोला मैं जा रहा हूँ फिर से काम पे, और दूसरे कमरे से, दूसरे दरवाजे से आकर के सारा दृश्य देखने लगे। अब इस बार भगवान ने सोचा कि टाइम वेस्ट करने की बात है, जितनी ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा उतना मैं भी भूखा रहूंगा और ये भी भूखा रहेगा, इसलिए अच्छा है कि जल्दी से खा लेता हूँ। और आज पहली प्रार्थना में ही, पहला प्रणाम मंत्र बोलते ही भगवान ने लड्डू उठाकर खाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही आधा लड्डू खाया था, तुरंत क्या देखते हैं कि उधर से मुकुंद दास दर्शन कर रहे हैं भगवान की इस लीला का। तो इस लीला का दर्शन करते ही मुकुंद दास की तो बड़ा ही उनको विचलित हो गए। मुकुंद दास बोले क्या है, मैं पूरा जीवन आरती करता रहा, जप करता रहा, गायत्री जाप करता रहा, ब्राह्मण बनकर जीवन जीता रहा, लेकिन ये क्या हुआ, अचानक से मेरा पुत्र जो था वो भगवान उसके लिए प्रसाद भोग ग्रहण करने के लिए आया था। और मुकुंद दास के इस क्वेश्चन मार्क पर देखिए, जैसे ही श्रद्धा गई, जैसे ही शक आया जीवन में, वैसे ही भगवान जो थे वापस पुनः विग्रह में प्रवेश कर गए, और वो आधा लड्डू आधा ही रह गया। आज भी कुछ लोग कहते हैं भाग्यशाली भक्त जब श्रीखंड क्षेत्र में जाते हैं कटवा के पास में, तो उन गोपीनाथ विग्रह के हाथ में आज भी कुछ भक्तों को, जिनको दिव्य दृष्टि है या भक्ति में प्रगढ़ है, उनको आधे लड्डू का दर्शन होता है, ऐसे वर्णन आता है। तो आप सोचिए जरा कि श्रद्धा कितनी इंपॉर्टेंट इकाई है, कितनी महत्वपूर्ण इकाई है हमारे जीवन में। तो जो ये रघुनंदन ठाकुर हैं, ये जब इनको ले जाते हैं मिलवाने के लिए चैतन्य महाप्रभु से, उनके पिता मुकुंद दास, तो चैतन्य महाप्रभु इस बारे में जानते थे कि भाई भगवान है चैतन्य महाप्रभु के, इस बच्चे ने मेरे को क्या खिलाया था, एक दिन लड्डू खिलाया है, मेरे को भोग लगाया है। तो वो पूछ रहे हैं मुकुंद दास से कि किबा रघुनंदन पिता तुमी तारतनय, निश्चय करिया कहे याऊ का संशय। किबा रघुनंदन पिता, पिता रघुनंदन है या तुमी तारतनय या फिर तुम पिता हो, इस बात का निर्णय करके बताओ पिता कौन है, रघुनंदन या मुकुंद दास। किबा रघुनंदन पिता तुमी तारतनय, निश्चय करिया कहे याऊ का संशय, इस बात में मुझे संशय है। तो मुकुंद दास वर्णन करते, चेतन महाप्रभु कहते हैं मुकुंद कहे रघुनंदन मोर पिता है, आमी तार पुत्र ए अमार निश्चय। ये मेरा निश्चय है कि मुकुंद दास कहते हैं चैतन्य महाप्रभु से कि हे महाप्रभु, ये जो पुत्र है ये सच मायने में पिता है मेरा रघुनंदन, क्योंकि जिस व्यक्ति ने मुझको भगवान का दर्शन कराया और मैंने कभी जीवन में भगवान का दर्शन नहीं किया, तो ये सच मायने में मेरा पिता है ना, ये मेरा पालन करने वाला है। पिता हो या पति हो, वही है जो पालन करता है ना, बोलते हैं जगत पिता भगवान को या जगत पति बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस बात पर एक निर्णय दिया और कहा, सुनी हर्ष करे प्रभु कहिला निश्चय, यहाँ है ते कृष्ण भक्ति से ही गुरु है। सुनी हर्ष कहे प्रभु, भगवान ने हर्ष से खुश होकर कर कहा, कहिला निश्चय, निश्चय होकर दृढ़ पूर्णता होकर कहा, यहाँ है ते कृष्ण भक्ति, जो कृष्ण भक्ति प्रदान करता है से ही गुरु है, जो आपको दर्शन करा सकता है वो गुरु है। हो सकता है वो आपका पुत्र भी हो सकता है, आपका मित्र भी हो सकता है, आपका शिक्षा गुरु भी हो सकता है, दीक्षा गुरु भी हो सकता है, जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आपको कृष्ण प्रेम प्रगाढ़ता में बढ़ाने में आपकी मदद करे से ही गुरु है। यहाँ है ते कृष्ण भक्ति से ही गुरु है। तो मुकुंद दास भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मुकुंद दास के बारे में वर्णन है कि वो सरकारी वैद्य हुआ करते थे एक मुस्लिम सरकार की सेना में, और मुसलमान सरकार में जब वो लोग बीमार होते थे तो वैद्य थे, सरकारी वैद्य, जैसे मुरारी गुप्त के बारे में सुनते हैं कि वो भी एक वैद्य थे, ये भी एक वैद्य थे। और जब ये अपना औषधियां लेकर के इलाज करते थे, तो एक बार राजा बीमार था और उसका इलाज करने के लिए उसकी गद्दी पर बैठकर उसकी नब्ज देख रहे थे, और इतने में उनका जो सेवक था वो मोर पंख से क्या कर रहा था, चंवर जैसे करते हैं ना, यजन व्यजन सेवा कर रहा था। और व्यजन सेवा करते वक्त मोर पंख को नाचता हुआ देखकर, ये सावन में जो भगवान लीलाएं करते हैं, झूला उत्सव इतने सारे वृंदावन में मनाया जाता है, उन सब झूला उत्सव में मोर की बहुत महिमा है। जैसे हम जाते हैं बरसाना, तो वहाँ एक मोर कुटीर है जहाँ पर भगवान ने बरसाना में राधा और कृष्ण बनकर दोनों मोर बनकर के नृत्य करते हैं और काफी मोर आ जाते हैं, इसीलिए भगवान को मोर बड़ा प्रिय है, मोर पंख लगाते हैं भगवान। तो वो जो मोर जो है वो इस समय भगवान के उनको स्मरण होने लग गए, और स्मरण होते हुए उनको वृंदावन की लीलाओं का स्मरण हुआ, और स्मरण करते हुए वो मूर्छित होकर के गिर पड़े। जब वो मूर्छित होकर मुकुंद दास गिर गए तो उनसे पूछते हैं राजा कि क्या हो गया, आप तो वैद्य हैं, आप खुद ही बीमार हो गए, कहाँ दर्द है आपको, क्यों गिर गए आप, एकदम बेहोश हो गए थे आप, काफी देर तक मूर्छित थे। तो उन्होंने अपनी भक्ति को बचाते हुए छुपाते हुए कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो मिर्गी का दौरा पड़ा था, मुझे कभी कभी मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, इसलिए मैं बेहोश हो जाता। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो भगवान की भक्ति के अंदर जो भी अंतरंग इच्छाएं हैं या भक्ति के अंदर जो भी हमारे अनुभव हैं उनको छुपा के रखना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर जैसे लिखते हैं ना, कहते अपनार भजन कथा ना कहिबे यथा तथा। अपना भजन जो है, मैं 16 माला करता हूँ या मैं 25 माला करता हूँ या मैं कितने शास्त्र पढ़ता हूँ, इसका अपने गुरुजनों से बोल सकते हैं, सीनियर वक्त से बोल सकते हैं जिनसे आप शिक्षा लेते हैं, पर ऐसा नहीं कि यथा तथा हर जगह बोलते रहे, अरे पता है मैं 25 माला करता हूँ, 16 बताते हैं प्रभुपाद जी लेकिन मैं रोज 25 करता हूँ, ऐसा वर्णन नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे अनुभव धीरे धीरे कम होते हैं, और इसीलिए मुकुंद दास ने अपने अनुभव को राजा को नहीं बताया। लेकिन राजा समझदार था, वो समझ गया कि ये कोई साधारण स्थिति नहीं है, ये भक्ति की स्थिति है। तो रघुनंदन जो थे उन्होंने पूरा जीवन भगवान के पुष्करणी सरोवर के पास में सेवा करी, और वहां पर एक कदम वृक्ष था जो कि एक विलक्षण लीला करता था। वो कदम वृक्ष 12 महीने सिर्फ दो ही फूल देता था, एक राधा रानी के लिए और एक कृष्ण भगवान के लिए। दूसरे दिन जाओ तो फिर दो फूल, दो तोड़ लो, फिर नेक्स्ट डे फिर दो, और 12 महीने जब तक रघुनंदन ठाकुर ने सेवा करी पुष्करणी सरोवर पर, तब तक उनके राधा कृष्ण विग्रह के लिए दो ही फूल आते थे। क्योंकि जो ये रघुनंदन है, इनका कृष्ण लीला में वर्णन है कि ये कंदर्प मंजरी है, और द्वारका लीलाओं में ये भगवान के पुत्र है जिनका नाम है कंदर्प। कंदर्प मतलब होता है जो कि कामदेव होता है, मदन है ना, हम गाते हैं कंदर्प कोटि कमनिया विशेष शोभम, तो कंदर्प मतलब मदन है ना। उनकी भगवान की शोभा कैसी है, जैसे कोटि करोड़ों करोड़ों कामदेव भगवान में समाहित हो, तो कंदर्प मतलब जो कामदेव है, मदन, इसलिए भगवान का एक नाम है मदन मोहन। तो ये उन्हीं के अवतार बताए जाते हैं रघुनंदन ठाकुर। श्री रघुनंदन ठाकुर तिरुभाव तिथि की जय। अभी हम चर्चा करते हैं थोड़ा वंशीदास बाबा जी महाराज के बारे में। तो बंसीदास बाबा जी महाराज के बारे में तो पूरी पुस्तक भक्ति सिद्धांत भक्ति विकास स्वामी महाराज ने लिखी है, और भी प्रभुपाद भी कई बार दो जगह लेक्चर्स में उनके बारे में बहुत ही सुंदर बातें बोलते हैं। तो वंशीदास बाबा जी महाराज गौड़ीय परंपरा में हैं और बहुत ही विलक्षण साधु संत हैं, उनसे कृपा याचना करनी चाहिए। आज के दिन उनका तिरोभाव हुआ है। तो पूर्वी बंगाल जिसे वेस्ट बंगाल कहते थे, वहां पर 1859 में मजीदपुर गांव में उनका जन्म होता है, जो कि आजकल किशोरगंज के नाम से बांग्लादेश के अंदर आता है। उनके पिता का नाम था सनातन बर्मन, और वो एक मछुआरे थे जो कि मछलियां पकड़ते हैं। मछुआरे के घर में जन्म हो रहा है, मतलब व्यक्ति बोल सकता है कि भाई भक्त होना चाहिए, भक्त के घर में ही भक्त आ सकता है, लेकिन हिरण्यकश्यपु के घर में भी प्रहलाद आ सकते हैं, तो भक्त कहीं पर भी प्रकट हो सकता है। अरे भगवान की कृपा होनी चाहिए बस, है ना। ये नहीं है कई लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी आप तो बड़े महान है, आप तो भक्त के घर में जन्म हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उसको कृपा मिल रही है कि भजन साधन करने का ज्यादा मौका मिल रहा है, लेकिन कौन व्यक्ति अपने पिछले जन्म में कितनी प्रक्रिया पूरी कर चुका है हम कुछ नहीं कह सकते। और अभी बस पता चला वो 60% पूरी कर अभी 61 से प्रारंभ कर रहा है। कोई हो सकता है कि अभी भक्त के घर में आया और वो 40 से शुरू कर रहा है, तो हम कुछ नहीं कह सकते कौन क्या कर रहा है। तो इस तरह से मछुआरे के घर में इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम था सर्व सुंदरी देवी, तो बहुत ही वो सुंदर सर्व सुंदरी देवी। और इनके तीन भाई और थे, मतलब दो भाई और थे। इनका नाम था बचपन का बंशीदास बाबा जी महाराज का भैरव चंद्र, और इनके दो भाई थे जिनका नाम था कुलचंद्र और राजचंद्र, और इनकी चार बहनें थीं। तो सात बच्चों के परिवार में पैदा हुए। भैरव नाम से पुकारे जाते थे, भैरव भैरव कहके इनकी माता इनको बुलाती थी। इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा भक्ति के प्रति रुचि उत्पन्न कर ली, और वर्णन है कि इन्होंने हरिलाल व्रजवासी नाम के इनके कुल गुरु हुआ करते थे। कुछ लोग बोलते हैं नरोत्तम दास थे, लेकिन कुछ लगा वर्णन है हरिलाल व्रजवासी के नाम से, उनसे इन्होंने दीक्षा ग्रहण किया। और दीक्षा ग्रहण करने के बाद में रोज अपनी जप साधन में ध्यान पूर्वक साधना में लगे रहते हैं। लेकिन जीवन का पिता ने एक ही लक्ष्य बताया, मछली पकड़ो और मछली बेचो। अभी ऐसे परिवार में बांग्लादेश में जन्म हुआ है, मछली पकड़ो और मछली बेचो, और सुबह उठकर क्या बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी सोचिए, वैसे बंगाली लोग नहीं मछली को गलत मानते, हम मानते हैं। बंगाली लोग तो बोलते हैं एटारा जलेर फल, जल का फल है, एटा तो जलेर फल, मछली को जल का फल बोलते हैं, इसलिए वो लोग ग्रहण कर लेते हैं भक्त होने के बाद भी। जगन्नाथ पुरी में भी जगन्नाथ के भक्त हैं, रात दिन भोग लगा रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन मछली खा लेते हैं। तो इसीलिए जब भी कुछ हमारे इस्कॉन में दीक्षा दी जाती है बंगाल में, तो नो मीट ईटिंग के साथ में नो फिश ईटिंग भी बोला जाता है, ना बोलते बोलो नो फिश ईटिंग। उन्हें लगता है ये लोग तो सलाद के रूप में कहीं मछली ना खा लें, तो बड़ा ही ध्यान देने वाली बात। तो मछली को बोलते जल का फल, तो मछली बेचा करते थे। लेकिन हमेशा से उनका ध्यान था कि एक सच्चा मुझे गुरु चाहिए जीवन में। वो पहचानते थे कुछ लोग खाली ऐसे ही भजन कीर्तन करते हैं दिखावे के लिए, लेकिन अंदर से भक्ति जीरो होती है ना, जैसे मेरी जैसी स्थिति है, प्रवचन दे रहे लेकिन अंदर से भक्ति जीरो है। इस तरह से वो बहुत ही जिसे कहते हैं विलक्षण, देखने में उनकी रुचि जैसे होता है ना जौहरी, हीरा कौन सा कोयला कौन सा, किसी के पास नहीं जाते थे। उनके माता पिता समझ गए कि ये साधु बनने वाला है, एक दिन घर छोड़कर चला जाएगा, पीबीटी ज्वाइन करेगा, आईवाईएफ ज्वाइन करेगा और निकल जाएगा ब्रह्मचारी बनके। तो उन्होंने कहा कि इसको क्या करो, कंट्रोल करो। तो कंट्रोल करने का तरीका क्या है भौतिक संसार में, शादी कर दो, विवाह कर दिया। विवाह कर दिया, विवाह होने के बाद में 6 महीने का पुत्र भी हो गया, लेकिन अभी उनको पुत्र जो रोता था उसका रोना जो है वो ऐसा लगता था कि जैसे ये अपनी माँ के लिए रो रहा है, मैं क्यों नहीं अपने पिता के लिए रोता कृष्ण के लिए। और वो रोना देखकर उनको रोना आता था, कहते थे ये तो माँ बोलती पत्नी थी, बोलती थी ये भी रोता है और ये भी रोता है, मतलब पति भी रोता है और पुत्र भी रोता है, मैं किसको संभालूं। वो रोते थे कृष्ण के लिए और ये रोते थे अपनी माँ के लिए, बच्चा रोता था। तो एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि भाई जो भी अब छोड़ दूंगा मैं। तो उन्होंने नरोत्तम दास बाबा जी महाराज एक थे जो नरोत्तम दास ठाकुर की वंश परंपरा में आते थे, और उनसे उन्होंने बाबा जी वेश धारण किया। पहले भी बहुत कुछ धारण नहीं करते थे, सिर्फ एक गमछा और एक टॉवल जैसे होता है ना यहाँ उत्तरिया डालते थे, लेकिन जब उन्होंने वेश लिया बाबा जी का तो ये ऊपर की उत्तरिया भी उतार दी, नीचे का गमछा भी उतार दिया, खाली कोपीन पहन कर के वो चलते थे। तो उनके पास में तीन चीजें होती थी, कोपीन, कोपीन के साथ में होता था उनका करंग, करंग मतलब लोटा जिसमें जल पिया जाता है, करंग, और कंथा मतलब जब सर्दी लगे तो कंबल होता था, पुराना फटा हुआ सारा कंबल कंधे पे डालते थे। कोपिन, करंग और कंथा, तीन चीजें लेकर के वंशी बाबा जी महाराज चलते थे और बिना कुछ बताए अपने परिवार को त्याग करके नरोत्तम दास ठाकुर बाबा जी, जो नरोत्तम दास बाबा जी जो थे उन्हीं के आश्रम में रहने लगे और वंशीदास बाबा जी महाराज नब जाम उनका नाम पड़ गया तो सब कुछ त्याग करके निकल गए और बोले अब मैं जाकर के कहाँ रहूंगा। एक कुटिया बनाई और कुटिया बनाकर के पंचवटी नाम से उसी कुटिया के अंदर रहने लगे। तीन वर्ष तक वहां रहकर अपना जप साधन किया और उसके बाद यात्राओं पे निकले, दक्षिण भारत, वृंदावन, जगन्नाथपुरी और अनेकों जगह पर अनेक लीला करते हुए, लोगों से मिलते हुए, अपने अपनी उनको शिक्षाएं देते हुए वापस आते हैं। कोला द्वीप नाम का स्थान है, जब हम मायापुर जाते तो नौ द्वीप में से एक द्वीप है कोला द्वीप, तो कोला द्वीप में उन्होंने वहां जाकर के काफी दिन रहे और टेंट लगाकर रहते थे, कभी टेंट हटा देते थे और उसी स्थान पर वो रहे। और अपने अंत समय में जब वो लीलाएं अपनी समाप्त कर रहे थे तो वापस अपने गांव जहां जन्म हुआ था मजीदपुर वापस चले गए और मजीदपुर जाकर उन्होंने 1944 में अपने देह को तिरोभाव किया और वो यहां से पलायन कर गए भगवत धाम। तो जो जब वो मायापुर कोला द्वीप में रहते थे तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने भक्ति सिद्धांत महाराज को कहा कि एक बहुत ही विलक्षण संत यहाँ रहते हैं। अब वो तो गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज से मिलते थे भक्ति सिद्धांत महाराज, पर उन्होंने कहा कि उन्हीं के समरूप एक भक्त है वंशीदास बाबा जी महाराज, आप उनसे भी मिल सकते हैं, वो बहुत ही बड़े वैष्णव हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जब उनसे मिलने जाते थे तो वंशीदास बाबा जी महाराज उनको बोलते थे जगन्नाथ बिमला, जगन्नाथेर बिमला, जगन्नाथेर बिमला, मतलब क्योंकि बिमल प्रसाद नाम था भक्ति सिद्धांत महाराज का। तो और वो प्राप्त हुए थे भक्ति विनोद ठाकुर को जगन्नाथ मंदिर में एक पार्वती जी का विग्रह जिसका नाम है विमला देवी, उनकी कृपा से मिले तो उनका नाम था विमला प्रसाद, तो इसलिए वो बोलते थे जगन्नाथेर बिमला ऐसे कह के बुलाते थे। और कभी कभी कहते थे ये देखो, जब वो विमल प्रसाद थे तभी, अरे देखो मंजरी आ गई है मुझसे मिलने के लिए, भगवान की मंजरी आई है, अभी मंजरी आ गई है तो अब राधा रानी भी आएगी, राधा रानी को कहाँ छोड़ दिया मंजरी तुमने, ऐसे करके बात करते तो सभी हैरान थे उनको कि अरे ये तो कमाल है ना। तो बाद में भक्ति सिद्धांत महाराज के बारे में जब उनके भक्त आए, उन्होंने दीक्षा दी, गौड़िया मठों की स्थापना करी, प्रभुपाद जैसे भक्तों को उन्होंने बनाया, उनको जीवन में भक्ति प्रदान की, तब उनके बारे में पता चला कि वो भी नयन मंजरी है भक्ति सिद्धांत महाराज। लेकिन इस बात का जब वो विमल प्रसाद पे, जब उन्होंने दीक्षा भी नहीं लिया है तभी वंशीदास बाबा जी महाराज ने बोल दिया था आ गई मंजरी, मेरी मंजरी आ गई है, राधा रानी कहाँ रह गई है। तो उनको इतनी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, तो भक्ति सिद्धांत महाराज उनके लिए बोलते थे कि जो भी व्यक्ति योगपीठ मंदिर से वंशीदास बाबा जी महाराज से कोला द्वीप में मिलने जाए तो वो कुछ ना कुछ उनको दक्षिणा दे के आए, गेहूं चावल, ताकि उनका अन्न प्रसाद भोग लगता रहे और वो प्रसाद खाए। अपने विग्रहों के साथ में उनका एक अजीब संबंध था, सारा दिन गौर, गदाधर, निताई, राधा कृष्ण और गोपाल ऐसे विग्रह थे उनके साथ, उन्हीं विग्रहों के साथ में रात दिन रहना, उन्हीं के लिए फल सब्जी खरीदना, भिक्षा मांगना और फिर भिक्षा मांगकर उनको धोना, माला बनाना, कीर्तन करना, नरोत्तम दास ठाकुर के भजन गाना और माला अर्पित करना, भोग अर्पित करना, और इसी में सारा दिन निकल जाता था। तो उनकी जो लीलाएं हैं वो बड़ी ही ऐसी लीलाएं, सुनेंगे तो हमारे जीवन में वैराग्य की उत्पत्ति हो सकती है जिसमें हम फंस गए हैं भौतिक संसार में। तो बताते हैं कि एक बार वो सेवा करने के लिए निकल रहे थे, वहां पर एक स्त्री थी वो मछली बेच रही थी, क्योंकि अब इन्होंने भी मछली बेचने का कार्य अपने बचपन में किया था, लेकिन अभी एकदम अवधूत स्थिति में थे जहां पर कुछ भी पूर्व स्थिति का स्मरण नहीं था, सिर्फ एक ही चीज का स्मरण होता था, कृष्ण लीलाओं का स्मरण होता था। ऐसी स्थिति में इनको अचानक से मछली वाली मछली बेच रही थी, मछली ले लो, मछली ले लो, मछली ले लो, देखते ही इनके मन में आया कि आज मछली खानी चाहिए। तो बहुत ही गुस्सा आया, कहा ये क्या, मैंने अपने जीवन में पत्नी का त्याग किया, पुत्र का त्याग किया, सबको छोड़ दिया और आज एक ये मछली मेरे स्मरण में कैसे आई। अंत काले चमा में स्मरण मुक्त, स्मरण में मछली आ गई तो मछली का स्वरूप मिल जाएगा, ये क्या हुआ इतनी भक्ति करके मछली। तो उन्होंने कहा मैंने अपने विग्रहों से आकर मैंने तुम्हारे लिए अपना जीवन नछावर किया, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेरे स्मरण की रक्षा करो, और क्योंकि तुम स्मरण की रक्षा नहीं कर पाए इसलिए मैं क्या करूंगा, तुमको दंडित करूंगा। तो उनका एक हम नहीं कर सकते ऐसा उठा करके बोले रस्सी से बांध के बोले मैं दंडित करूंगा, हमारा वो भाव नहीं है, क्योंकि हम वैरागी नहीं, हम कोपिन पहन के नहीं घूमते, हम कंठा करंग धारण नहीं करते, हम तो धोती कुर्ता पहनते, प्रसादी पूरी प्लेट खाते हैं, हमारा वो भाव नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या किया, राधा कृष्ण के विग्रह को उठाया, रस्सी से बांधा और पानी में फेंक दिया, और उसकी जो रस्सी का दूसरा छोर था अपने पांव से दबा दिया, और बोले कि आप बताओ पानी में डूब के आप मछली खाओ कितनी खानी है तुमको। तो जितने भी लोग थे वो सारे हैरान थे, ये बाबा जी क्या कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने अपने भक्तों को पहले बोलते थे जाओ, अभी बोल रहे थे उनसे मिलने मत जाना, उनके दर्शन करने मत जाना। तो काफी सारे भक्तों को लगा कि शायद इसलिए बोल रहे हो कि वंशीदास बाबा जी महाराज अभी माया में है। तो उन्होंने कहा कि वो माया में नहीं है, वो एक ऐसे स्तर पर है ना, वैष्णव रे क्रिया मुद्रा विघे ना बुझाए, वैष्णव की क्रिया मुद्रा देखकर समझ नहीं आता ये क्या है ये, वो तो उसकी जब लीलाएं होती हैं, जब वो तिरोहा होता है तभी समझ में आता है यार ये क्या क्या करके चला गया जीवन में, है ना। लेकिन जब तक होता है अरे ये तो कल आए थे भक्त, ये क्या भक्ति करेंगे, हमें बताएंगे ये, ऐसा लगता है। लेकिन कौन कितनी भक्ति करना चाहता, किसके हृदय में कितने कृष्ण है, नोबडी कैन टेल, या तो गुरु बता सकते हैं या कृष्ण बता सकते हैं, कोई नहीं बता सकता। इसीलिए उन्होंने कहा ये वैष्णव अपराध होगा, इसलिए इनको दूर रखो अपने भक्तों को, और कहा आप जाओ मत बाबा जी का दर्शन करने के। तो उनका एक अलग ही संबंध भगवान के साथ स्थापित था। एक बार गौर निताई भगवान के लिए उनके पास पीतल के दो छोटे छोटे बर्तन कोई देकर गया था दक्षिणा में, उनको भोग लगाते थे पीतल के बर्तन से, लेकिन अपनी कुटिया को खुला छोड़ देते थे, उस कुटिया में कभी कोई ताला नहीं डालते थे। लोग बोलते थे आपकी कुटिया में कोई चोरी कर गया, पीतल के बर्तन हैं, पीतल के विग्रह हैं, कोई ले गया तो क्या होगा। तो बोलते थे, प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं एक लेक्चर में, कहते हैं तुम क्यों चिंता करते हो, एक चोर ने दिया है दूसरा चोर ले जाए, एक चोर है माखन चोर, वस्त्र हरण चोर है, इतने सारी चित चोर है, इतना सारा नाम है, अरे एक चोर ने दिया है दूसरा चोर ले जाएगा, जिसने दिया अब वो उसी के ऊपर है, वो उसकी रक्षा करना चाहता है या चोर को देना चाहता है, मैं कुछ नहीं करना चाहता, इसलिए खुला छोड़ दे। और ऐसा हुआ एक दिन, दोनों बर्तन चोरी हो गए जिसमें भोग लगता था। अब आकर के बोलते हैं रहो भूखे, बर्तन चोरी करवा दिया है ना, तुम्हारी इच्छा से ही तो चोरी हुई, क्योंकि तुम सबके हृदय में विराजमान हो, अभी चोरी हो गई तुम अब भूखे रहो, तो भोग नहीं लगाया। बोले बर्तन आएगा तो भोग लगेगा। दूसरे दिन एक व्यक्ति आया और बोला बाबा जी महाराज ये एक छोटा बर्तन आपके लिए, पीतल का वैसा ही बर्तन है। तो बोले छोटा वाला तो निताई के लिए, तो निताई को लगेगा गौर भूखा रहेगा, क्योंकि आज गौर ने बर्तन नहीं मंगवाया, निताई को भोग लगाया और गौर बेचारे बैठे बैठे देखते रहे। दूसरे दिन उन्होंने जब गौर के लिए गौर बात करने, गौर बोले मुझे भोग नहीं लगाओगे बाबा जी, तो बोले हाँ भोग लगाओ तो कटोरा लेके आप ना। कहे कहाँ से लेके आऊं, मैं तो विग्रह हूं, मैं कैसे जाऊं कटोरा मांगने के लिए। तो थोड़ी देर बाद कोई आता और कहता है ये बड़ा कटोरा हम आपको भिक्षा में दान देना चाहते हैं। तो बोले आ गया कटोरा ले, आज तू भी खा ले, है ना। फिर उसके बाद रोने लग गए भोग लगाने के बाद, कहते हैं कि तुम कितने ही शरारती हो गए हो, मुझे अच्छा लगता है क्या तुमको दंड देना, तुम्हें भूखा रखना, लेकिन तुम इतने शरारती हो और ये भी नहीं सोचते कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, अब मुझसे रोज रोज तुम्हें दंड नहीं दिया जाता, तुम्हारे पीछे नहीं भागा जाता, कभी तुम विग्रह से निकल के भाग जाते हो, कभी तुम ऐसे कार्य करते हो कि चोरी करवा देते हो, ये उनका देखिए अब सेवा भाव है। तो भागवतम में वर्णन है कि ऐसे जो भक्त हैं उनके कैसे हम समझ सकते हैं। तो भागवतम के 11वें स्कंद में परमहंस स्थिति का वर्णन है कि परमहंस कैसे होते हैं। तो कहते हैं बुद्धो बालकवत क्रीडेत कुशलो जड़वत चरेत वदेत उन्मतवत विद्वानम गौचार्यम नेगमश्चरेत। बुद्धो बालकवत, जो बुद्धिमान है भक्त वो बालक के जैसा व्यवहार करते हैं। बालक के जैसा मतलब आप देखिए जितने भी सीनियर महाराज लोग होते हैं ना, उनका नेचर बड़ा ही चाइल्डिश हो जाता है। हम भी कहते हैं अरे कैसे हैं, बिल्कुल बच्चे के जैसे हैं, क्योंकि बच्चा जो होता है ना वो जेलस नहीं रखता, अपने हृदय में द्वेष नहीं रखता। उसको एक थप्पड़ मारो तो अपने 3 घंटे बाद घूम करके उसी पिता को प्यार कर रहा होता है जिसने मार मार के उसको दूर भगाया होता है। उसके अंदर कोई द्वेष नहीं होता, उसके अंदर जो होता है ना कोई भी प्रकार का द्वंद नहीं होता, ड्यूअलिटी नहीं, दुगलापन नहीं होता। उसके लिए बस मेरे माता मेरे पिता के प्रति श्रद्धा है। कल भोजन कौन बनाएगा वो नहीं पूछता, कल क्या बनेगा, स्कूल की फीस जाएगी नहीं जाएगी, उसकी पूरी श्रद्धा होती है अपने माता पिता पर। तो जो बालक बनना है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुद्धो बालक वतः, बुद्धिमान बालक के अनुरूप, बालक के समान होता है। क्रीडेत, और वो वैसे ही अपने जीवन को श्रम में नहीं लगाता। कुशलो जड़वतः चरेत, और जो कुशल व्यक्ति है, दक्ष है, वो जड़ रूप बन जाता है ना, उसको इस संसार के किसी भी व्यक्ति का कुछ भी कहा हुआ परेशान नहीं करता। वदेत उन्मतः वत विद्वानम, और विद्वान होने पर भी वो बहुत ही साधारण व्यवहार करता है, बुद्धिमान होने पर भी साधारण व्यवहार। जैसे कोई व्यक्ति व्यासासन पर बैठकर कुछ बोल रहा है, और कई बार क्या होता है, वो गलत बोल रहा होता है, वो व्यक्ति को पता होता है गलत बोल रहा है, लेकिन जो बुद्धिमान होता है ना, वो जाकर बोलता है, प्रभु जी आप ना गलत बोल रहे थे। क्यों? इस टाइम क्या दिखा रहा है वो? बुद्धि। अगर उसको ठीक करना है तो सीनियर डिवोटी कोई बोल देगा, उसको शिक्षा देने वाला, ये ठीक है। लेकिन हम, और कई बार तो कुछ लोग होते हैं वो हाथ खड़ा करते हैं, आपने ये मिस कर दिया, क्या दिखाना चाहते थे वो? ऐसे एक बार हुआ था वृंदावन में, एक बार भागवतम क्लास चल रहा था, तो वहां पर कुछ भक्तों के साथ में बैठे थे, सीनियर डिवोटीज भी थे साथ में। तो एक व्यक्ति जो लेक्चर दे रहे थे वो बैंगलोर साइड से आए थे, तो उनकी लैंग्वेज थोड़ा तमिलियन टाइप की थी, तो वो एक चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो फंस गए बोलते बोलते। तो उन्होंने बोला, आप में से कोई वर्णन करना चाहते हैं? तो मेरे मन में आया कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा श्लोक है, मुझे अच्छे से आता है, मैं वर्णन करूँ। तो साथ बैठे जो सीनियर भक्त थे, उन्होंने कहा, प्रभु रहने दो, अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन मत करो, व्यासासन पे बैठा व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान है आपसे। तो वही है, वेदात उन्मतः बत विद्वानम। तो ये बात उन्होंने प्रैक्टिकली समझा दी, और मुझे वो एहसास भी हुआ कि गलती कर दी मैंने। उसके बाद कभी हाथ नहीं खड़ा करा, अभी कभी कोई बोलेगा भी बोलो, नहीं बोलेंगे, हमें नहीं आता कुछ भी, है ना। गोचार्यम नियमश्चरेत, और अपने नियमों को जानने पर भी नियमों का प्रदर्शन नहीं करना, है ना। तो इस तरह से वंशीदास बाबा जी महाराज अपने नियमों का, अपनी भक्ति का प्रदर्शन नहीं करते थे। उनके साथ जो भक्त रहते थे, उनके साथ रहते रहते ही एकदम से उठकर चल देते थे, रात्रि में ही चलने लगते थे। लोग बोल रहे हैं, हमारे साथ यात्रा में बाबा जी आए थे, सुबह उठकर देख रहे बाबा जी गायब, किसी से पूछा, किसी बाबा जी को देखा, कहा हाँ बस अभी 2 घंटे पहले इसी रास्ते से चले गए, अकेले ही अपना लोटा उठा करके, करंग उठा करके वो चले जाते थे। फिर भक्त पीछे पीछे पहुंचते थे, बाबा जी आपने बताया नहीं, तो कुछ बोलते भी नहीं थे, फिर अपना बस एक ही चीज बोलते थे, क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो एक व्यक्ति आया, उनसे कहता है, बाबा जी मुझे कृपा कर दो। ऐसे बहुत सारे भौतिक संसार के लोग है ना, वो सोचते हैं भक्तों के पैर छूलोगे तो बहुत कृपा मिल जाएगी, भक्तों के पांव छूलो तो कृपा मिल जाएगी। और कृपा का मतलब होता है मेरे धन में वृद्धि हो, मेरे परिवार में वृद्धि हो, सब कुछ, फैक्ट्री जो है मेरी, 1 फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री हो जाए, मेरा 1 बिजनेस से 2 बिजनेस हो जाए, मेरी नौकरी में प्रमोशन, ये है एक्चुअली कृपा का मतलब। तो आए और कहते हैं, बाबा जी महाराज कृपा कर दीजिए, बाबा जी महाराज कृपा कर दीजिए। बाबा जी कुछ बोलते नहीं थे, जड़वत रहते थे, लेकिन बहुत बार बोलने पर बाबा जी कृपा करो कृपा करो कृपा करो, बाबा जी एक कॉपिन पहनते थे, उसको फाड़ दिया, कहा ये ले कृपा, ले जा। देख के हैरान, बोला अरे मतलब कॉपिन भी निकाल दिया अपना, मतलब कोई है ही नहीं इनको सोच शुद्ध बुद्ध। जैसे सुखदेव गोस्वामी एक ऐसे स्तर पर हैं जहां पर वस्त्र की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है, जहां पर शर्म हया भी समाप्त हो जाती है ना। तो वो इस प्रकार की स्थिति में चले गए, हमें ऐसा नहीं करना है कल को कुर्ता उतार कर हम घूमने लगे, तो पहले ऐसी स्थिति का भजन हो, उसके बाद में ऐसा हो, वो अपने आप होता है, वो करना नहीं पड़ता है कि फैशन में मैं कपड़ा उतारूंगा। तो इस तरह से वो थे। और एक व्यक्ति आया, कहता है, बाबा जी महाराज मैं आपसे सीखना चाहता हूं, मुझ पर कृपा करिए कि मैं क्या करूं कि मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त हो। तो चुप बैठे रहे, कहा भजन तेरे पास में, जप तेरे पास, ऐसे हम लोग भी करते हैं ना। प्रभुपाद ने लिखा, चैंटिंग करो, मॉर्निंग साधना करो, भागवतम पढ़ो और भागवतम सुनो, और अपनी सेवा करो प्रैक्टिकल, जन्माष्टमी के लिए फंड कलेक्शन करो, और भगवान की वॉलंटियर सेवा करो, लोगों को कनेक्ट करो, ये सब। फिर भी कोई नया व्यक्ति आएगा लेक्चर देने के लिए, कोई महाराज आएंगे लेक्चर देंगे, हमारा एक ही प्रश्न होता है, कैसे भक्ति आगे बढ़ाए। अरे प्रभुपाद ने बता रहे, फिर वही बोलेंगे, चैंटिंग करो, भागवतम पढ़ो। सोचने वाली बात है, जब वही प्रक्रिया है तो उस प्रक्रिया पे ध्यान लगाएं, बार बार प्रश्न पूछने से कुछ नहीं होगा। तो वो व्यक्ति पूछे जा रहा है वंशीदास बाबा जी महाराज से, उन्होंने कहा जप करो, बोल रखा है जप करो, लेकिन फिर भी आ रहा है, फिर आ रहा है। तो उन्होंने बोला, कैसे मैं, आप मुझे बताइए कि मैं कैसे भगवान को प्रसन्न करूं। तो उन्होंने कहा रो, क्या कहा, रो, रुदन करो, और वही प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, रुदन करो भगवान से, रुदन करो भगवान, अपना प्रेम दे दो, भगवान के हाथ में ही है, वो दे सकते हैं, उन दे सकते हैं। तो भिक्षा मांगने के लिए कभी कभी जाते थे तो केवल उन्हीं घरों में जाते थे जहां पर धार्मिक भक्त होते थे और फल आदि ही स्वीकार करते थे। अगर कोई व्यक्ति मिठाई देना चाहे, पकवान बनाकर, कलाकंद, गुलाब जामुन, हम तो खुश हो जाएंगे, है ना, अरे वाह, तो गुलाब जामुन लेके आए, भोग लगा के खा लेंगे। लेकिन वो बोलते थे नहीं नहीं, मेरे गौर निताई खाली क्या खाते हैं, वो फल खाते हैं, और फिर वो फल ही ग्रहण करते थे। गौर निताई मिठाई नहीं खाते, इसलिए वो मिठाई नहीं खाते थे। एक बार एक लड़की थी जो 7 वर्ष की थी, वो उनकी कुटिया में रोज गंगा जल भरकर पानी पीने के लिए रख जाती थी। अब एक दिन वो पानी भर के जैसे ही जाने लगी, बाबा जी कहते हैं बेटी रुक जाओ, बाहर मत जाओ। तो उसने कहा बाहर बाबा जी क्या हो गया, बाहर क्या दिक्कत है। वो मानी नहीं, चल दी, तो बाबा जी कभी कभी गुस्से में आ जाते थे तो उठा करके उनको पकड़कर खींच के अंदर कर दिया कुटिया में। तो वो घबरा गई, ये बाबा जी मेरा हाथ पकड़ लिए। कुछ ही देर बाद बहुत जोर की आवाज हुई और पता चला कि बादलों के गड़गड़ाहट से एक बिजली गिरी है जो कि उसी एरिया में गिरी है उनकी कुटिया के बाहर, और जितने भी जानवर आदि थे सभी मारे गए। तो उन्होंने उस बच्ची की रक्षा करी क्योंकि वो सेवा करती थी। तो इस तरह से बंशीदास बाबा जी महाराज बहुत ही दिव्य दृष्टि रखते थे। एक बार एक व्यक्ति था जिसको मलेरिया हो गया था, उसके घर वालों ने कहा, उस जमाने में मलेरिया का इलाज नहीं होता था, ज्यादातर लोग मलेरिया से मर जाते थे। तो मलेरिया के कारण उठा करके उनके परिवार वाले उनकी कुटिया के बाहर छोड़ गए, बोले यहाँ कराता रहेगा, ये बाबा जी भी जड़वत है, इनको फर्क नहीं पड़ता और ये यहीं मर जाएगा, बाबा जी की कृपा हो जाएगी तो ये कुछ अच्छी योनि प्राप्त कर लेगा। तो पड़ा रहा 4 दिन तक वहां कराता रहा, बाबा जी जप करते रहे। 4th दिन बाहर निकले, देखा एक आदमी पड़ा हुआ है। कहा 4 दिन से तुम ही यहाँ लेटे हुए थे? कहा मेरे परिवार वाले छोड़ गए, अब मैं मरने वाला हूँ। तो अंदर गए, गौर निताई के पास से तुलसी का पत्र उठाया और उस व्यक्ति के मुंह में डाला। जैसे मुंह में डाला, वो व्यक्ति का मलेरिया उतर गया, बुखार उतर गया, भौतिक संसार का कलमश उतर गया और वो क्या बोलने लगा, हरी बोल हरी बोल हरी बोल, और उठा और अपने घर वापस चला गया, है ना। तो ऐसे विलक्षण वो चीजें करते थे। एक बार जगन्नाथपुरी में जब थे तो जगन्नाथपुरी में बैठे हुए थे और अचानक से रथ रुक गया भगवान का, और रथ बढ़ ही नहीं रहा था। तो बाबा जी महाराज ने जगन्नाथ जी से कहा कि हाँ ठीक है, मैंने आपका दर्शन कर लिया है और भक्त आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, अब चलो। जैसे ही बोला चलो, रथ चल पड़ा। तो ऐसी अनेकों लीलाएं उन्होंने करी हैं। जब वो एक बार जगन्नाथपुरी में भजन गा रहे थे और देख रहे थे कि एक हाथी के ऊपर बैठा महावत, कई बार होता है ना ऐसे इलाकों में जहाँ धर्म क्षेत्र है हमारे, तीर्थ स्थल, हाथी के आशीर्वाद दिलवाते हैं लोग, और फिर आप उसे 10 रुपए दो तो वो उठा करके महावत के हाथ में देता है, महावत इकट्ठे करता रहता है, उसका घर चलता है और हाथी को वो कुशा से मारता रहता है, उसको पिटाई खानी पड़ती फिर भी वो सेवा करता है। कभी ये नहीं बोलता कि यार 10 रुपए मेरे पे भी खर्च कर दो ना, अपने पास इतना रख रहे हो, कभी नहीं बोलता। तो जब उन्होंने हाथी को देखा कि कुशा मार रहा है और ये पिट रहा है, उसके बाद भी सेवा करता जा रहा है, तो रोने लगे और कहते हैं, से संबंध नहीं जार, व्रथा जन्म गेला यार, ए पशु बड़ो दुराचार। से संबंध नहीं जार, व्रथा जन्म गेला यार, ए पशु बड़ो दुराचार। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं से ही पशु बड़ो दुराचार, मतलब वो पशु है जो दुराचारी है, जो अपने संबंध को नहीं जानता। लेकिन यहां वो कहते हैं ए पशु बड़ो दुराचार, मतलब मैं जो हूं पशु के समान हूं, बड़ा दुराचारी हूं जो अपने संबंध को स्थापित नहीं कर पा रहा। दुख आता है तो सेवा छोड़ देते हैं, परेशानी आती है तो सेवा छोड़ देते हैं, माला छोड़ देते हैं, लेकिन अपने संबंध को हम स्थापित नहीं कर पा रहे। उस हाथी की स्थिति ज्यादा अच्छी है, बाबा जी कहते हैं, जो कुश से रोज पिटाई खाता है और फिर भी अपने स्वामी की सेवा करता है। और हम जो है अपने स्वामी की सेवा करने में सोचते हैं, कल जाएंगे जन्माष्टमी कलेक्शन करने, परसों जाएंगे जन्माष्टमी कलेक्शन करने, परसों जाएंगे इन्विटेशन कार्ड देने, आज क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं। तो इस तरह की भावना हमें बाबा जी महाराज से सीखनी चाहिए। और भी बहुत सारी लीलाएं, पर समय ज्यादा हो गया तो अभी मैं समाप्त करूंगा। हरे कृष्णा।